Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dashashloki, aap sabke paas xerox mil gaya hoga. Saath mein padhte hain. श्री शंकर भगवत पाद विरचिता दश श्लोकी न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर् न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूह अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस् तदेको वशिष्ठः शिवः के न वर्णा न वर्णाश्रमाचार न मे धारणाध्यान अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुव सुषुप्तो निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न सांख्यम् न शैवम् न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकारे मतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केव न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापरादिक् वियद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपस् तदेको वशिष्ठ शिवः केवल न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णोस् तदेको वशिष्ठ शिव केवलो न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तेजस प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयस् तदेको वशिष्ठ शिवः के अपि व्यापकत्वाद्हितत्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तम् तदन्यत् तदेको वशिष्ठ शिवः के न चैकं तदन्य द्वितीयं कुतस्य न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं न शून्यं न चाशून्यमद्वैतक कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि कथं सर्ववेदा यही है कथं सर्ववेदांत सिद्धं ब्रवीमि। अद्वैत की जब स्थिति प्राप्त हो जाती है ना, वहां फिर कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता। अभी आप लोग अपने को श्रोता मानते हो, मैं अपने को यहां बैठ करके वक्ता मानता हूं। अभी तो वेदांत सिद्धांत के लिए हम बोल रहे हैं कुछ, और जब तक ये वाणी का विषय रहेगा तब तक कहते हैं वादो नावलंब्य। अंतिम में तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वह है मौन धारण करना। जितने आप मौन रहोगे ना, उतने अपने स्वरूप का अनुभव करोगे। और जितने हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो बहिर्मुखता आती है। बहुत सारे उदाहरण आप लोग पहले सुने हुए हो। दक्षिणामूर्ति भगवान ने कैसे ज्ञान दिया, मौन होकर। बाबुलनाथ महादेव को रोज जल चढ़ाते लोग, क्यों चढ़ाते उनको, मौन है वो, बोलने लग जाए। अभी देख लो कुछ लोग तो विरोध शुरू कर देंगे, उससे बात करते हमसे बात नहीं करते। मौन है, चाहे फ्रिज का ठंडा पानी उनके ऊपर डालो, चाहे गीजर का उबलता हुआ गर्म पानी डालो, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। और घर में भी वही व्यक्ति प्रिय होता है जो कुछ नहीं बोलता। एक तो हमारे यहां 10 साल भारत में शासन किया और कभी कुछ बोले ही नहीं, मामला निकल गया सब। ये मौन में बड़ा दम है, बड़ी शक्ति है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते ही रहते हैं, जब बोलोगे तो यही है द्वैत की स्थिति, और जब मौन रहोगे ये है अद्वैत। आप लोग दशश्लोकी श्रवण कर रहे हो, कल से ये प्रारंभ हुआ। शायद मुझे लगता है नेट में सुनने वाले लोगों को पता लगे न लगे, 10 श्लोक है इसलिए इसको दशश्लोकी बोलते हैं। और इसके ऊपर सिद्धांत बिंदु, यहां तक इसकी प्रशंसा की गई है कि यदि वेदांत शास्त्रों को सुनने के बाद भी कहीं किसी के मन में कोई संशय रह गया हो या रह जाए, वे भी यदि इसका सहारा लेंगे तो जो आपके मन में बचा खुचा वेदांत शास्त्र संबंधी संशय है वह निवृत्त हो जाएगा। चाहे अर्थवाद के लिए कहा गया हो, अथवा जब इसको पढ़ोगे समझोगे उसके बाद जो आपका अनुभव होगा वही इसमें प्रमाण माना जाएगा। प्रत्येक श्लोक के भाव अलग अलग हैं, और इसी सिद्धांत बिंदु के ऊपर, सिद्धांत बिंदु टीकाकार हो गए आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, और उसके ऊपर फिर गौड़ ब्रह्मानंद जी की टीका है न्याय रत्नावली। उन्होंने सिद्धांत बिंदु के ऊपर ये व्याख्या लिखी है। तो 10 श्लोकों को पढ़ के और शाब्दिक अर्थों को जानने के बाद भी जो वेदांत के जिज्ञासु हैं वे यदि इसके गहराई तक पहुंचना चाहें तो ये सिद्धांत बिंदु आदि का भी अध्ययन जरूर करें, पढ़ें। कल भूमिका बनी, ये प्रारंभ हुआ कि पहले हमें द्वैत क्या है इसके स्वरूप को जानना होगा। अद्वैत जो परमात्मा का स्वरूप है वह तो सबको प्राप्त है ही, अप्राप्त की प्राप्ति तो मानते नहीं, प्राप्त होकर के भी अप्राप्त सा जो लग रहा है, ये सा की तरह अर्थात अप्राप्ति की तरह जो लग रहा है उसको कैसे जाना जाए, उस प्रतिबंधक को कैसे हटाया जाए, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आप प्रेमपुरी सत्संग भवन में आते हो, कोई पूछेगा वहां किसके लिए जाते हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सवेरे सवेरे का समय है, समाधि में मत जाना। अभी कोई पूछेगा कि आप प्रेमपुरी किस लिए जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? ज्ञान तो हमारा अपना स्वरूप है, उसकी क्या प्राप्ति करनी है? एक बात कह सकते हो, जो ज्ञान हमारा स्वरूप है और जिस अज्ञान की वजह से वह ज्ञान आवृत हो गया है, उस अज्ञान को हटाने के लिए हम यहां आते हैं। तो अज्ञान हटा नहीं क्या अभी तक? आप ये भी वेदांत में सुनते हो, शैवाल होता है ना, शैवाल पानी के ऊपर जब आप डुबकी लगाने लगते हो, नहाने लगते हो और वो कचरा आता है तो लोग उसको हटाते हैं हाथ से, और फिर जब डुबकी लगाओ और जब तक डुबकी लगा के ऊपर निकलोगे तो शैवाल पुनः वहीं मिलता है, फिर उसको हटाते हैं लोग, दूर दूर तक हटाते हैं, जब तक आप डुबकी लगा के निकलोगे तब तक फिर वहीं मिलता है। बस ये अज्ञान हटने की बात यही है। प्रेमपुरी सत्संग भवन में हम तो लगता है इस गेट के अंदर जब आप घुसते हैं तो आपका जो अज्ञान है ना वो तो बाहर रह जाता है, और अंदर आते आप क्या बन जाते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और बाहर जाके क्या बोलते हैं? जगत सत्यम। ब्रह्म मिथ्या बोलोगे? अरे ऐसा मत बोलना, आगे वाला पद मत बोलना, इतने बोलना जगत सत्यम। अंदर आकर के बोलते हो जगत मिथ्या, बाहर बोलते हो जगत सत्यम। हमारा जो वह अधिष्ठान परमात्मा जिसमें बोलते हैं, वह इस द्वैत रूपी जो भी प्रपंच है, ऐसे अत्यंता भाव वाले जो है वही अधिष्ठान है, परमात्मा है। मोटा सा दृष्टांत तो आप सुनते हो बार बार, रस्सी में क्या दिखता है? बंबई वाले को भी दिखता है क्या? हाँ, आप लोग तो यहां सुनते हो केवल, कभी देखा है? बंबई में तो मुझे लगता है सांप होगा ही नहीं, उधर होगा ना, यहां आसपास में तो नहीं है। अच्छा, सांप कब दिखता है रस्सी में? मंद अंधकार, अंधकार तो है लेकिन मंद है, तीव्र अंधकार में तो दिखेगा नहीं, और अत्यंत प्रकाश में भी नहीं दिखता है। अब इस जगत में जो यह जगत जिसमें दिख रहा है, जगत को देखते हुए भी जगत परमात्मा से अलग नहीं है। आप एक दृष्टांत सुनते हैं कि जैसे घड़ा है, घड़ा, घड़ा बनने से पहले क्या है? मिट्टी। घड़ा फूटने के बाद क्या है? मिट्टी। तो बीच में जो घड़ा दिख रहा है वो भी क्या होना चाहिए? मिट्टी। तीनों काल में मिट्टी ही है। वैसे ही जो ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, जिसको हम बोलते हैं अनादि और अनंत, अनादि अनंत का मतलब यही होता है, पहले भी जो था आगे भी जो रहने वाला है, इसलिए बीच में जो दिख रहा है वह भी वही है। जगत के रूप में भी परमात्मा ही है, लेकिन अभी हम जगत को देखते हुए परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी सत्ता में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पढ़ते हो, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। महाराज यहां तक बोलते हैं, ये जितने शास्त्र है, गुरु है, शिष्य दशश्लोकी में आया, न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न चत्वम न चाहम न चायम प्रपंच, कुछ भी नहीं रह जाता वहां पर। लेकिन उससे पहले तो सब मानना पड़ेगा ना। ये संसार आपको कैसा दिख रहा है? जब जब भ्रम होता है, जब जब हम अज्ञान में पड़ते हैं, उसके जो मूल रूप है, एक तो हम शरीर को लेकर के और एक जगत को लेकर के जो भ्रमित होते हैं, सिद्धांत बिंदुकार यहीं से इस बात को उठाते हैं। शरीर आत्मा नहीं है, ये बात सबको पता है। ऐसे अनात्मा के जो आश्रय है, अनात्मा श्रयाहम ममाध्यासहानाते शब्द से श्लोकी में है, ऐसा जो यह अनात्मा रूपी शरीर है, इसमें क्या बुद्धि होती है? आत्मत्व बुद्धि होती है। आत्मा में आत्मत्व बुद्धि हो जाए तो ज्ञान हो गया, लेकिन अनात्मा में यदि आत्मत्व बुद्धि होवे तो इसी को अज्ञान बोलते हैं। रस्सी को रस्सी के रूप में जानो तो ठीक है, रस्सी में आपने रस्सी नहीं देखी, सांप देखा, ये अज्ञान है। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, शरीर अनात्मा है, इसमें आत्मा के भान करते हम लोग। और जगत क्या है? असत्य है। ऐसे असत्य जगत में सत्यत्व बुद्धि होती है। दो है ये अधिष्ठान के मूल रूप, असत्य को सत्य मानना और अनात्मा को आत्मा मानना। देहात्मा प्रत्ययो यदवत्, देह में आत्मा का जो प्रत्यय है, जो प्रतीति है, ज्ञान है, यदवत् उसकी तरह प्रमाणत्वेन कल्पितः, जिस प्रकार से हम लोग आत्मा शरीर को मानते हैं, अनात्मा को आत्मा मानते हैं, उसी तरह से जिस दिन हम आत्मा को आत्मा मानने लग जाएंगे, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। अब बात है कि सुनते हैं जब कथा, अभी बता दिया ना, आपका अज्ञान तो भी बाहर है। यहां जब तक आप सुनोगे दश श्लोकी तब तक तो ठीक है, जब यहां से नीचे उतरोगे, आप लोग जब यहां से निकलते हो तो जो कथा सुनते हो उसकी चर्चा करते हो या और बात करते हो? जो जिस संबंधित संस्कार से ग्रस्त है वह व्यक्ति वही बात करता है। यदि कपड़े का व्यापारी होगा, हाँ भाई आजकल क्या भाव चल रहा है, जिसको राजनीति में रुचि होगी, कल प्रधानमंत्री ने क्या भाषण में बोला, एक घंटा दो घंटा लगा के आप 7:30 से 8:30 ये सुनते हो, फिर 9:45 से 9:30 स्वाध्याय श्रवण करते हो, बाकी आप अपने निजी साधना भी करते हो, फिर भी जो संस्कार प्रबल है वही निकलती है भाषा के रूप में, वाणी के रूप में, बार बार जो हम नहीं चाहते बोलना। वो गुरुजी थे ना, अपने शिष्य को कहा, बेटा खाना कुछ भी, डकार तो हींग की निकालना। आप इतने भोजन करते हो ना, जो अंतिम में पापड़ खाते हैं तो जो खाए हुए उसके डकार में गंध नहीं आती, किसकी गंध आती है? पापड़ की, जबकि पापड़ से अतिरिक्त आपने बहुत कुछ खाया है, लेकिन उस सब को दबा देता है। वैसे ही ये दुनिया के जो भी व्यवहार करो, लेकिन अंदर से वेदांत की ही गंध निकले। यदि अंदर ये संस्कार के रूप में पड़ा है तो, और इधर से सुना, इधर से निकाला, इधर उतरता ही नहीं है, तो फिर निकलेगा क्या? जो होगा अंदर वही तो निकलना है। तो बाहर जो आपका अज्ञान प्रतीक्षा कर रहा है, वो भूत की तरह हमारे ऊपर सवार हो जाता है। और जब कहते हैं आपने कथा में क्या सुना, बोले वो सत्संग भवन में अच्छा लगता है, बाहर उसको लागू मत करो। साधना की बात आती है, कल भी हम शाम के प्रवचन में यही बोल रहे थे कि देखो, संसार में रुचि रखने वाले और परमार्थ में रुचि रखने वाले का स्वभाव बड़ा अलग अलग होता है। जो परमार्थ में रुचि रखते हैं वे तो संसार के व्यवहार को निपटाते हैं, और लगे रहते किसमें, अपनी साधना में, वेदांत पढ़ने में, गीता पढ़ने में। और जिन लोगों की रुचि संसार में होती है वे लोग परमार्थ को निपटाते हैं। एक है संसार को निपटा करके भजन में लगने वाला, भाई ये काम आ गया फटाफट हो जाए, फिर तो पूजा में बैठना है मुझे, मुझे तो वही अच्छा लगता है, बस लगता है हाथ में माला जपता रहूं, भगवान के नाम लेता रहूं। और जिन लोगों के पूजा पाठ में रुचि नहीं है, संसार में रुचि है, बोलते बस ये आधा घंटे की पूजा है, उसके बाद फिर दिन भर यही काम तो करना है। परमार्थ में रुचि रखने वाले लोग संसार के काम निपटाते हैं, संसार में रुचि रखने वाले लोग परमार्थ के काम को निपटाते हैं। आप लोग यहां निपटाने के लिए आए हो कि निपटने के लिए आए हो? अब तो कमर कस लिया है कि जैसे भी इस जन्म मरण से निपटना है, अब तो आर पार के हो जाए, कमर कस लिया है, कोई बात नहीं, अब आ गए तो भगवान तो बोलते ही है भाई एक बार जो मेरे सामने आ गया उसका तो कल्याण होना ही है। सिद्धांत बिंदुकार ये प्रारंभ कर रहे हैं, मंगलाचरण कल हुआ, आचार्य शब्द से निर्देश कर दिया। आचार्य किसको बोलते ये भी आप सब जानते हो, जब हम षट संपत्ति आदि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी बन जाते हैं, वह आचार्य जैसे शास्त्रों का चयन करते हैं, चयन में सम उपसर्ग लगा दो तो संचयन बनता है। और आचार्यों की बड़ी देन है, उनकी बड़ी कृपा है, आप अनेक शास्त्र पढ़कर के भी आचार्य के अभाव में गुरु के बिना संगति नहीं लगा सकते हो। किस प्रसंग में ये आया है ये आपको यदि समझना है तो उसके लिए हमें आचार्य के शरण में जाना पड़ेगा। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्य के पास जाता है वही उसको जान पाता है। और आचार्य के पास कौन जाएगा, वो होगा श्रद्धालु। और श्रद्धालु यदि है तो साधन चतुष्टय संपन्न में एक ये भी साधन है, क्या है वह, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु और वेदांत वाक्येषु, गुरु कैसे हैं, शास्त्र के प्रमाण के बिना बोलते नहीं है। केनो परिषद में कहीं ऐसा प्रसंग आया है कि जब गुरु के मुखारविंद से श्रवण करते हो और शास्त्र का प्रमाण, गुरु के उपदेश और आपकी अनुभूति, जब ये तीनों एक हो जाते हैं ना, यही मोक्ष प्राप्त कराने वाले होते हैं। गुरु उपदेश देवे लेकिन शास्त्र के प्रमाण से एकता ना हो, शास्त्र के प्रमाण भी हो जाए, गुरु का उपदेश भी हो जाए लेकिन अपनी अनुभूति से मेल न खाए, तो भी उसमें जो एक वीर्यवत्ता, जो सामर्थ्य आनी चाहिए वो नहीं आ पाते। ये याद रखना आप लोगों को, कुछ बातें कथा में ऐसी हो जाती जिसमें आप ध्यान नहीं दे पाते होंगे, तो इसका ध्यान रखना। जैसे एक धर्म का भी लक्षण किया जाता है ना, धर्म के बारे में आप बहुत सुनते हो, जिसको धारण किया जाए उसको धर्म बोलते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम ये सब नाम गिना देते हैं, धारणा धर्म मित्याहु। लेकिन धर्म का जब लक्षण किया मनु महाराज ने तो बड़ी अच्छी बात कही है, धर्म के लक्षण जान लोगे तो ज्ञान भी कैसे धारण करना ये भी समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि धर्म का जो स्वरूप है विद्वद भी सेवितम, एक तो होता है लौकिक धर्म, लौकिक धर्म का बाध, लौकिक धर्म प्रतिबंधित हो जाता है कहां, शास्त्रीय धर्म के सामने। लोक में भी बहुत सारे धर्म हैं, गुजरात में कुछ अलग प्रथा होगी, महाराष्ट्र में कुछ अलग प्रथा होगी, इसको लौकिक धर्म बोलते हैं। आप बंबई का भी धर्म बता दो, आप लोग घर में झाड़ू पोछा करते हो, झाड़ू कैसे रखते हो, खड़े करके कि लेटा करके? खड़े करके रखेंगे तो क्या होगा, कहां से लेटा करके रखने की परंपरा बनी, कौन से पुराण में धर्मशास्त्र में लिखा है कि घर में झाड़ू लेटा करके ही रखे, खड़े करके ना रखे? किसी को ऐसे पूछा एक बार क्यों रखते हैं लेटा करके, तो बोले झाड़ू खड़े करके रखने से झगड़ा होता है। तो क्या जिनके घर में झाड़ू लिटा के रखते हो वहां झगड़ा नहीं होता?